ये आकाशवाणी है। अब आप नईम अख्तर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी मानवता को लाभ सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उन्होंने एआई मॉडल से जुड़े अंतर्निहित पूर्वाग्रहों से संबंधित चर्चा की। प्रधानमंत्री ने एआई फाउंडेशन और काउंसिल फॉर सस्टेनेबल एआई स्थापित किए जाने के निर्णय के लिए राष्ट्रपति मैक्रों को बधाई दी। उन्होंने उत्तरदायी और समावेशी एआई शासन आगे बढ़ाने में भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने एक प्रमुख घोषणा में कहा कि भारत अगले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने एआई के लिए वैश्विक साझेदारी और समावेशी बनाने का भी आह्वान किया, जिससे विकासशील देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं का समाधान सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री ने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस से भी मुलाकात कर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में 14वें भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित किया और आपसी व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने और नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। फोरम में दोनों देशों के शीर्ष औद्योगिक नेता रक्षा, एयरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधारभूत ढांचे और सतत विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विमर्श के लिए एकत्रित हुए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वैश्विक निवेश गंतव्य के तौर पर भारत के प्रति बढ़ते आकर्षण का उल्लेख किया और स्थिर नीतियों और निरंतर आर्थिक सुधारों की चर्चा की। उन्होंने बीमा क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पूर्ण रूप से खोलने, नागरिक परमाणु ऊर्जा में निजी भागीदारी की अनुमति देने और व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए कर संरचना सरल बनाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि नियामक सुधारों से भारत का आर्थिक प्रशासन अधिक भरोसेमंद और सक्षम बन गया है। प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी कंपनियों को रक्षा, ऊर्जा, विमानन, अंतरिक्ष, फिनटेक और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी फोरम को संबोधित करते हुए एआई और नवाचार के लिए वैश्विक समावेशी दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति कारिस ने रेखांकित किया कि भारत और एस्टोनिया के बीच प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण संबंध लोकतंत्र विधि सम्मत शासन, स्वतंत्रता तथा बहुलतावाद के मूल्यों के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने एस्टोनियाई सरकार और कंपनियों को डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। मिजोरम में ग्राम और स्थानीय परिषद चुनाव के लिए आज मतदान होगा। इस चुनाव में 9 जिलों की 544 ग्राम परिषदों और 111 स्थानीय परिषदों के लिए वोट डाले जाएंगे। ग्राम परिषद चुनाव में 4,37,000 से अधिक और स्थानीय परिषद चुनाव में 2,85,000 से अधिक मतदाता हिस्सा लेंगे। मतदान सवेरे 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, वहीं मतगणना भी आज शाम 7 बजे से होगी। प्रयागराज में आज महाकुंभ का माघी पूर्णिमा स्नान चल रहा है। कल्पवास के विशेष अनुष्ठान के समापन के प्रतीक इस स्नान का विशेष महत्व है। इस वर्ष इसमें 10 लाख से अधिक कल्पवासी शामिल होंगे। महाकुंभ में कल्पवास विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा तक प्रयागराज में संगम तट पर कल्पवास करने से 1000 साल की तपस्या का फल मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अवसर पर विशेष यातायात व्यवस्था के साथ ही मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गुरु रविदास जयंती के अवसर पर आज राजधानी में छुट्टी की घोषणा की है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार के अधीन सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि हमास ने यदि शनिवार दोपहर को इसराइली बंधकों को रिहा नहीं किया तो गजा युद्ध विराम समाप्त हो जाएगा। हमास ने इससे पहले कहा था कि इसराइली युद्ध विराम उल्लंघन उस चरम बिंदु पर पहुंच गया है जहां वो अब बातचीत नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।